नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित 5 विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक और आयकर अधिनियम शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड या 11 स्वीकार्य दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। सरकार ने देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे, जो अब 1000 किलोमीटर से अधिक हो गए हैं।
21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहाँ कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है।
श्री मोदी ने कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने जयसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बंदर स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में परिवर्तन संकल्प सभा में कहा कि आत्मनिर्भर भारत आज का आदर्श वाक्य है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छापुर आयुध कारखाना रोजगार सृजन के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहा है। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि अपराध और भ्रष्टाचार तृणमूल कांग्रेस की पहचान बन गए हैं।
बंगाल को चाहिए सच्चा परिवर्तन, आशोल परिवर्तन, जो नारे में नहीं काम में दिखे, जो उद्योग लगाए, घर के बेटे बेटी को बंगाल में ही नौकरी दे, जो बेटियों को सुरक्षा दे, किसान को सुविधा दे, फसल का सही दाम दे, जहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार में नहीं जेल में होंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के गया में 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार का तेज विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।
गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
प्रधानमंत्री ने बिहार के गया जंक्शन से वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन के साथ साथ गया से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। एक रिपोर्ट।
यह अमृत भारत ट्रेन किफायती हाई स्पीड रेल यात्रा प्रदान करेगी, जो न केवल गया जी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी बल्कि आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान भीड़ को भी कम करेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक दिलीप कुमार ने बताया कि इस ट्रेन में दरवाजों पर सीढ़ियां, दिव्यांगजनों के लिए शौचालय और जर्क फ्री कम्पलिंग जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह ट्रेन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का खर्च नहीं उठा सकते।
आज दो ट्रेनों का सौगात मेरे मंडल को मिल रहा है। पहली ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस है जो गया से दिल्ली जाएगी और इस ट्रेन में सुविधाओं में कमी नहीं है। आपातकाल में पैसेंजर ड्राइवर से बात कर सके इसलिए टॉक बैक सुविधा दी गई है। विकलांग लोगों के लिए टॉयलेट काफी सुंदर और काफी आरामदायक बनाया गया।
यह ट्रेन सासाराम, टुंडला, गोविंदपुरी जैसे कई दूर दराज के स्टेशनों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी, जिससे यह दोनों शहरों के बीच सबसे सुविधाजनक ट्रेनों में से एक बन जाएगी। गया से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित 5 विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, आयकर अधिनियम 2025, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2025, प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2025, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 और भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 शामिल हैं। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। कल मानसून सत्र को निश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड या 11 स्वीकार्य दस्तावेजों में किसी एक को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस प्रक्रिया में कोई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने पर जोर नहीं देने को कहा है। न्यायालय ने राज्य भर के राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों से उन लोगों की सहायता करने को कहा जो अपने गणना फॉर्म जमा करने में असमर्थ थे और परिणाम स्वरूप उनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने से जुड़े अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके इलाके में छोड़ दिया जाना चाहिए। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर एक मजबूत रक्षा तंत्र का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश की कंपनियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी बना रहा है। श्री सिंह ने कहा कि देश 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान निर्मित करने और विमान के इंजन का विनिर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ देश में इंजन का विनिर्माण शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस युद्धक विमानों के विनिर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक नए आदेश को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के लिए विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है।
आज हम फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रान के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से निगरानी कैमरा, ऊर्जा मीटर, माइक्रोप्रोसेसर, आईपी और नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी चिप और सिस्टम ऑन चिप का विकास किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि 72 कंपनियों को चिप डिजाइन परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 4th संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर 29 अगस्त को रवाना होंगे। श्री मोदी भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए 2 दिन के जापान की यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद श्री मोदी तियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए 31 अगस्त से 2 दिन की चीन की यात्रा करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन भरे हैं। इनमें से 19 उम्मीदवारों द्वारा भरे गए 28 नामांकन पत्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत खारिज कर दिए गए। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार यूरिया की कुल उपलब्धता 183 लाख मीट्रिक टन है, जबकि अनुपातिक आवश्यकता 143 लाख मीट्रिक टन है, जो 155 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। राजस्थान में कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
सवाई माधोपुर के कई इलाकों में अति भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बूंदी के पाटन में भी 21 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारा जिले के किशनगंज, मांगरोल और अंता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोटा में 10 इंच से ज्यादा बारिश होने से निचले इलाके जलमग्न है। इसके अलावा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालोर, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में 8 से 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने आज कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई चैंपियनशिप के महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तमिलनाडु की एलावेनिल का इस प्रतियोगिता में यह पहला व्यक्तिगत पदक है। इससे पहले उन्होंने टीम स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक हासिल किए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। मेजबान जम्मू कश्मीर ने अपने कल के पदकों में 1 स्वर्ण पदक जोड़ा, जबकि ओडिशा ने 1 स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सशस्त्र बल अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास असम के लखीमपुर जिले में दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित दोलुंगमुख फायरिंग रेंज में बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू करेंगे। 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण अभियान में बम विस्फोट, रॉकेट प्रक्षेपण और हवाई शक्ति प्रदर्शन शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित 5 विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक और आयकर अधिनियम शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड या 11 स्वीकार्य दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर मजबूत रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।